بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. آج کی مجلس ہے مجلس نمبر 29. آج کا عنوان ہے شیخ کی ضرورت، اور شیخ کی دعا اور توجہ کی حقیقت. شیخ کی ضرورت اور شیخ کی دعا اور توجہ کی حقیقت. دیکھو، حضرت والا نے فرمایا شیخ کی دعا اور برکت کو بھی بڑا دخل ہے اصلاح میں. شیخ کی دعا اور برکت کو بھی بڑا دخل ہے اصلاح میں، لیکن اس کا درجہ محض اعانت ہے. اعانت کا ہے، یعنی مدد کرنے، اعانت کا ہے، نہ کہ کفایت کا. یہ صرف کافی نہیں ہے، چلو شیخ کی دعا مل جائے گا ہمارا کام بن جائے گا. نہیں، کام تو خود کو کرنا پڑے گا، شیخ کی دعا سے مدد ملے گی. فرمایا درجہ محض اعانت کا ہے، نہ کہ کفایت کا. جیسے عرق سونف، یعنی سونف، سونف جو ہوتی ہے نا، اس کا جو عرق پانی، عرق سونف کا مرتبہ مسحل میں کہ محض عرق سونف بلا مسحل کے کارآمد نہیں ہے. مسحل میں یعنی جو وہ کیا ٹوائلٹ جلاب کرنے کی، اس کو کیا بولتے ہیں، موشن، ڈائریا، ڈائریا کی جو دواؤں میں عرق سونف جو ہے وہ مدد کرتا، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. یا طبیب اور مریض کی مثال لے لو، یہ جلدی سمجھ میں. اگر مریض دوا نہ پیے تو طبیب کی محض شفقت اور توجہ سے مریض ہرگز اچھا نہیں ہوگا. یہ مثال بہت اچھی ہے، جلدی سمجھ میں آ جائے گی. کہ ایک تو ڈاکٹر شفقت کر رہا ہے، دعا دے رہا ہے، لیکن دوا جو دی ہے ڈاکٹر نے، اگر مریض وہ دوا نہیں کھائے گا تو اس کی شفقت اور محبت سے مریض اچھا نہیں ہوگا. ہاں، شفقت اور محبت اس کو مدد تو دے گی، دوا اصل کام کرے گی. تو دوا کفایت کا کام کرے گی، اور ڈاکٹر کی شفقت یہ اعانت کا کام کرے گی. جی، یا دوسری مثال، استاد اور شاگرد کی مثال لے لو کہ محض استاد کی توجہ سے، استاد کی توجہ سے سبق یاد نہیں ہو سکتا، بلکہ شاگرد کے یاد کرنے ہی سے یاد ہوگا. ہاں، استاد کی توجہ کام تو دے گی، مدد تو دے گی، لیکن اسے سبق یاد نہیں ہوگا. سبق تو شاگرد کو یاد کرنا پڑے گا. تو شیخ کا اصل کام راستہ بتانا ہے، شیخ کا اصل کام راستہ بتانا ہے، باقی راستہ کا قطع کرنا، یعنی راستے کو طے کرنا، یہ سالک ہی کا کام ہے. یہ سالک یعنی جو چلنے والا ہے، اسی کا کام ہے کہ اسی کو تو اس راستے پر چلنا ہوگا. شیخ تو بتائے گا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اتنا کرنا ہے، یہ اتنا کرنا ہے، وہ تو بتائے گا، کرنا تو اسی کو ہوگا. جیسے اندھے کو سو انگارا بتاتا ہے، گود میں اٹھا کر اس کو نہیں لے جاتا. سوانکھارا، اندھے کو راستہ تو بتاتے ہیں، گود میں اٹھا کر اس کو نہیں لے جاتا. راستہ تو خود اس کے چلنے ہی سے قطع ہوگا، اندھا ہوتا ہے تو اندھے کو راستہ بتاتا تو ہے، لیکن اٹھا کر کوئی لے کے نہیں چلتا، کیونکہ چلنا تو اس اندھے ہی کو ہوگا، لیکن راستہ بتانے والا کوئی نہ کوئی ہوگا، خود اس کے چلنے سے ہی قطع ہوگا. یہ تھی حضرت کی عبارت. لوگوں کی ایک غلط فہمی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی شیخ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں گے، کسی پیر کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، کسی سے بیعت کر لیں گے تو بس کام ہو جائے گا. بس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا بیعت کر لیا بس اب کام ہو، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں. اب اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ خود بخود ہماری اصلاح بھی ہو جائے گی اور خود بخود اللہ تعالی کے یہاں مقرب بن جائیں گے اور سیدھے جنت میں بھی پہنچ جائیں گے. بیعت کر لو بولے سیدھا جنت میں پہنچ جائیں گے، کرنا کچھ نہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے اور واقعتا بہت لوگ یہی سمجھتے. اس لیے بیعت ہوتے ہیں لیکن آگے کچھ کرتے نہیں، بولے اسی سے کام ہو جائے گا، اس کے بغیر زندگی نہیں گزارنی چاہیے. بیعت تو کوئی نہ کوئی شیخ سے ہو جانا چاہیے. شیخ کی توجہ اور دعا کا درجہ. حضرت والا اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے یہ کہنا چاہتے ہیں، حضرت والا یعنی حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ، اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے کہنا چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں اعتدال رکھنا اور ہر چیز کو اپنی حد میں رکھنا ضروری ہے. جی، ہر چیز کو اپنی حد میں رکھنا ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ کی توجہ اور دعا میں مرید کے لیے بڑی برکت ہے. نہ تو اس کو بے فائدہ سمجھنا چاہیے اور نہ ہی اس میں بے التفاتی ہونی چاہیے. اس کو بے فائدہ نہ سمجھے، اس سے فائدہ ضرور ہے، اس سے بے التفاتی نہ کرے، لینی چاہیے توجہ اور دعا، اور نہ ہی اس کی ناقدری کرنی چاہیے، اس کی ناقدری نہ کرے. اس لیے کہ شیخ کی دعائیں ملنا اور شیخ کی توجہات کا نصیب ہونا بھی بڑی نعمت ہے. یاد رکھنا، بعض مرتبہ شیخ توجہ تو ڈالتا ہے مرید پر، لیکن مرید اپنی ہمت سے چلتا نہیں ہے تو پھر شیخ اپنی توجہ ہٹا کر پھر کسی اور پر چل، تو اس کے درمیان میں اگر مرید چل پڑتا ہے تو اس کو پار ہو جاتا ہے، راستہ بہت جلدی پار ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مرید کی طرف سے سستی ہوتی ہے اور شیخ اس کو بار بار توجہ دے رہے ہوتے. اس لیے یہ توجہ کا دینا، کیونکہ یہ توجہ یہ نہیں، یہ اوپر سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، تو یہ بڑی نعمت ہے. لیکن حضرت والا نے دو لفظوں میں اس کی حقیقت بیان فرما دی کہ لیکن اس کا درجہ محض اعانت کا ہے نہ کہ کفایت کا. دو لفظ یاد رکھو، شیخ جو توجہ اور دعا جو کچھ بھی دیتا ہے اس کا درجہ محض اعانت کا ہے نہ کہ کفایت کا. یعنی کام تو خود ہی کرنا ہوگا، لیکن شیخ کی دعا، اس کی توجہ، اس کی ہدایات اس کام کے ممدو معاون ہو جاتی ہے اور اس سے ذرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور ہمت میں ذرا تقویت آ جاتی ہے اور مدد مل جاتی ہے. لیکن کام خود ہی کو کرنا ہوگا، راستہ خود ہی طے کرنا ہوگا. جی تو سمجھ میں آ گیا، تو راستہ تو خود ہی چلنا ہوگا. اس کی مثال بتائی تھی نا کہ ڈاکٹر کی صرف توجہ اور شفقت علاج کے لیے کافی نہیں ہے. پھر اس کی مثال دی کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، آپ اس کے پاس علاج کرانے کے لیے گئے، اب وہ ڈاکٹر آپ کے ساتھ کتنی ہی شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا ہو، وہ آپ پر کتنی بھی توجہ دے، لیکن محض اس ڈاکٹر کی توجہ کرنے سے اور محبت اور شفقت کرنے سے آپ کی بیماری دور نہیں ہوگی. محض شفقت اور محبت کرنے سے آپ کی بیماری دور نہیں ہوگی جب تک اس کی بتائی ہوئی دوا استعمال نہیں کروں گے. تو دیکھا کیوں کہ یہ اصلاح کا معاملہ بھی مریض اور ڈاکٹر کی طرح ہی ہے. یہاں پر مرید مریض ہے، شیخ ڈاکٹر ہے، بس صرف الفاظ کا فرق ہے، باقی سب کچھ ویسا ہی ہے. دیکھو یہاں مثال دی कि डॉक्टर शफीक होता है तो शेख भी शफीक होता है, लेकिन उसकी शफकत और तवज्जो और दुआ से मरीज अच्छा नहीं होगा। मरीज को तो खुद अपने जिक्र अस्कार और हिम्मत से अमल करना होगा। ऐसे ही डॉक्टर की दवा से मरीज अच्छा नहीं होगा, दवा उसको खानी होगी, फिर डॉक्टर की शफकत उसको मुआइन और मददगार होगी। समझ रहे हैं? आपकी बीमारी दूर नहीं होगी जब तक उसकी बताई हुई दवा इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरा डॉक्टर बड़ा माहिर है, ओहो पूरी दुनिया का नंबर वन है, और नब्ज शनास है, नब्ज शनास है, बड़ा शफीक है, यानी नफ्स को देखने वाला, पहचानने वाला है, वो देखकर पहचान लेता है और बड़ा शफीक है, इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। चुनांचे उसने जाकर डॉक्टर को अपना हाल बता दिया और वापस घर आकर बैठ गया और उसकी बताई हुई दवा पी नहीं। ऐसा शख्स कभी सारी जिंदगी भी सेहतयाब नहीं हो सकेगा। तो ऐसा ही हुआ कि शेख तो पूरी दुनिया में नंबर वन है, सारी दुनिया उनको जानती है, मानती है, और शफीक है, मेहरबान है, नरम है, उनसे जाकर बैत कर लिया। उन्होंने जो मामूलात बताए थे वो मामूलात दवा थी। अब आकर मामूलात कुछ नहीं कर रहा है, बोले मैं तो बैत हो गया हूं उनके सामने, बस अब मेरा काम बन जाएगा, ये कुछ भी नहीं होगा, याद रखना। वो मामूलात उनकी दवा है, उसको पीना पड़ेगा, उस दवा पीने के बाद उसका रिपोर्ट देना पड़ेगा। जी तो फरमाया जब तक दवा को इस्तेमाल नहीं करेगा महद शफकत, तो फरमाया सारी जिंदगी भी सेहतयाब नहीं हो सकेगा। अगर ऐसा उसने लिए, सेहतयाब उस वक्त होगा जब उस डॉक्टर की शफकत से लिखे हुए नुस्खे को इस्तेमाल करेगा, उसकी बताई हुई दवाई उसको खुद बाजार से लानी होगी। हाँ ये हो सकता है अजराए शफकत वो दवाएं अपने पास से दे दे, उसको खरीदनी न पड़े, लेकिन इस दवा को इस्तेमाल तो उसको ही करना होगा। जब तक दवा को इस्तेमाल नहीं करेगा महज शफकत से फायदा नहीं होगा, महज शफकत से फायदा नहीं होगा। तो इसी तरह शेख रूहानी मालिज होता है, रूहानी शेख जो होता है वो कौन होता है? मालिज होता है, वो रूह की बीमारियों का इलाज करता है, वो रूह की बीमारियों का इलाज करता है। जी वो अमराज बातिना को पकड़ता है, शेख रूहानी मालिज होता है, डॉक्टर है, रूह की बीमारियों का इलाज करता है, और वो रूह की बीमारियों को पकड़ता भी है, फिर उनका इलाज तजवीज करता है अलग अलग। अब अगर शेख चाहे कितना ही शफीक और मेहरबान हो, कितना ही तुमसे मोहब्बत करने वाला हो, लेकिन महज शफकत और मोहब्बत से काम नहीं चलेगा। जी जब तक तुम खुद रास्ते पर नहीं चलोगे और कदम नहीं बढ़ाओगे, जब तक उसके बताए हुए इलाज के मुताबिक काम नहीं करोगे, लिहाजा चलना इंसान को खुद ही होता है, खुद ही अमल करना पड़ता है, और आखिरत की जजा और सजा भी इंसान के अपने अमल ही पर होगी। जी अलबत्ता शेख रास्ता दिखा देता है, रास्ता दिखा देता है, रास्ता मुतय्यन कर देता है, और इलाज का तरीका सिखा देता है, अलबत्ता उस रास्ते पर चलना खुद ही होता है। लिहाजा शेख की तवज्जो और दुआ को बिल्कुल बेकार भी मत समझो कि सब कुछ मैं कर रहा हूं, शेख तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसा भी नहीं है, इसलिए कि शेख की दुआ और तवज्जुहात की बरकत से अल्लाह ताला सालिक की हिम्मत में कुव्वत अता फरमा देते हैं और आमाले सालिहा में निशात और जौक और शौक पैदा कर देते हैं, कुव्वत अता फरमा, आमाले सालिहा में जौक और शौक पैदा हो जाते। जी इंसान के करने से, हाँ उसको तो करना है, लेकिन पीछे से तवज्जो भी होती है। जी इसीलिए देखो अल्लाह ताला ने इतने सालों तक दावत और तबलीग के काम जो हिफाजत हुई है वो क्या हुई है। काम करने वाले जमातें तो सारी दुनिया में चल रही है और वो ये समझते हैं कि हम काम कर रहे हैं। नहीं नहीं बल्कि इनके पीछे वो मशाइख जो बैठे हुए रो रहे होते हैं, वो तवज्जो डाल रहे होते हैं पूरी दुनिया में काम करने वालों पर, उनकी बरकत से वो चल रहे थे और वो जब दुनिया से चले गए तो इख्तलाफ शुरू हो गया। इसलिए उसको बोले नहीं काम तो हम कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, मुजाहदा हम कर रहे हैं। नहीं, उसके पीछे किसी की दुआ है जिसकी वजह से तुम चल रहे हो। सिर्फ उनकी तवज्जो भी काफी नहीं, सिर्फ तुम्हारी मेहनत भी काफी नहीं, दोनों मिलेगा तो काम चलेगा। इसलिए मुरीद भी जिक्र अस्कार तो खूब करे लेकिन शेख की तवज्जो को न ले तो भी बेकार है, और खाली शेख की तवज्जो जिक्र अस्कार न करे, दोनों मिलेंगे तो नूरुन अला नूर होता है इसलाह के लिए। वरना तो अल्लाह का जिक्र तो गफलत से भी करेगा तो उसको अजर तो मिलेगा, सवाब तो मिलेगा, इसलाह कुछ और चीज है जी। लिहाजा शेख की तवज्जो दुआ को बिल्कुल बेकार भी मत समझो कि सब कुछ मैं कर रहा हूं, शेख तो कुछ भी नहीं कर रहा, ऐसा भी नहीं। इसलिए कि शेख की दुआ और तवज्जोहात की बरकत से अल्लाह ताला सालिक की हिम्मत में कुव्वत अता फरमाते हैं और आमाले सालिहा में निशात, जौक और शौक पैदा कर देते। अल्लाह ताला ने शेख का वास्ता इसलिए भी रखा है कि उसके ताल्लुक की निस्बत से बाज मकाईद नफ्स का इलाज हो जाता है। मकाईद नफ्स यानी नफ्स की मकारिया चालाकियों का इलाज हो जाता है। जी इलाज हो जाता। मसलन अपना कोई अमल अच्छा मालूम हुआ कि मैंने आज फुला अच्छा अमल किया, फुला इबादत अंजाम दे दी, तो शैतान उसके दिल में बड़ाई का ख्याल डालता है कि आज तूने कमाल कर दिया और तूने बड़े बड़े अवलिया अल्लाह वाली सूरत अपने अंदर पैदा कर ली। उसका नतीजा ये होता है कि वो शख्स किब्र और उजब के मरज में मुब्तला होकर अपने अमल को बेकार कर देता। अब ऐसे मौका पर अल्लाह ताला शेख के ताल्लुक को नफ्स के इस मकर से बचने का जरिया बना देते हैं। वो इस तरह कि आदमी इस नेक अमल को अपने शेख की तरफ मंसूब करे कि मैंने कुछ नहीं किया, तो उनकी तवज्जो से काम हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नेक अमल की जो तौफीक हुई है वो मेरे शेख की बरकत से हुई है, मेरे शेख की तवज्जो और दुआ से हुई है। यानी शेख की तवज्जो और दुआ की बरकत से मेरी हिम्मत में कुव्वत पैदा हुई जी। इसलिए तबलीगी काम के अंदर जितनी जमातें चल रही थी तो उनके भी तो मशाइख है, वो शेख की दुआ से सारी जमातें चल रही हैं। मैं इसलिए इस मिसाल को बताता हूं कि वो भी ये काम उस वही है, सेम काम है, लेकिन उसके अल्फाज उसका तरीके कार अलग है। वरना यहां पर वो मुरीद बोलते हैं, वहां पर दाई बोलते हैं और वो अपने मशाइख होते हैं। तो दाई जो भी काम मुजाहदा कर रहा है आखिर उनके वो मशाइख जिन्होंने उनको भेजा है उनकी तवज्जो इनके साथ होती है जब जाके उनकी गाड़ी चलती है। इसलिए दुआ की बरकत से मेरी हिम्मत में कुव्वत पैदा होती है, इस कुव्वत के नतीजे में इस अमल की तौफीक हुई। लिहाजा जब शेख से ताल्लुक होगा तो उस नेक अमल को शेख की तरफ मंसूब कर दूंगे। जब कोई किसी को अपना बड़ा बनाया होगा तो जो भी नेक अमल होगा वो उसकी तरफ मंसूब करे, भाई हमारा तो कुछ नहीं है, ये हमारे बड़ों का कमाल है, मेरे शेख का, मेरे उस्ताद का और मेरे फुला का, कि इन्होंने मुझे धक्का लगाया और आज मैं इस काम में लगा हुआ हूं, तो उनकी तरफ मंसूब करेगा। और अगर शेख नहीं होगा तो फिर उसके अंदर ये किब्र आ जाएगा, ओ मैंने किया है, मैं पढ़ा हूं, मैं किया है, तो शेख की जरूरत से क्या हुआ, उसकी एक अंदर की बीमारी भी दूर हो गई। लिहाजा जब शेख से ताल्लुक होगा तो उस नेक अमल को शेख की तरफ मंसूब कर दूंगे, उसकी नतीजे में वो नफ्स का कैद वहीं खत्म हो जाएगा। भाई लोगों ने बात तो करो चोरी जैसी। नहीं, चालू थे जी, घंटी आ गई। अच्छा, ये सब हाजी साहब का फैज है। मेरे शेख हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह को कई मर्तबा देखा। देखो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को कई मरतबा देखा कि कभी आम वाज की मजलिस में और कभी खास मलफूजात की मजलिस में बयान फरमा रहे होते, और बयान के दौरान जब कोई बहुत बारीक और दकीक बात या आला दर्जे का कोई नुक्ता बयान फरमा देते, बेहतरीन बात होती कि जिससे सुनने वाले भी झूम उठते, तो उसके बाद फौरन फरमाते कि ये सब मेरे हाजी साहब का फैज है। और मैं भी कई मरतबा कहा, भाई ये मेरा कमाल नहीं है, ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मेरी जो बात भी अगर आपको असर कर रही है, ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये हमारे उन बुजुर्गों का कमाल है, मेरे उन शेख का कमाल है जिनकी तवज्जो से ये चल रहा हूं। अगर वो हट जाए ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बेकार हूं। और वाकई तो फरमाया, देखो हजरत थानवी भी फरमाते थे, क्योंकि फौरन उजबा आ जाता है, ओ क्या अल्लाह ने तेरे पर बात खोली, तो वो खुली तो है लेकिन मेरा कमाल नहीं, ये मेरे बुजुर्ग की, मेरे शेख की तवज्जो है। तो फरमाते थे सब मेरे हाजी साहब का फैज है। उसके बाद फरमाते सब मेरे हाजी साहब का फैज, हाजी इमदादुल्ला मक्की उनके शेख थे ना, और वालिहान अंदाज में उसको बार बार दोहराते थे, ये मेरे 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 हाजी साहब का फैज है, और उसके जरिए अपना इलाज फरमाते। तो ये क्या होता था, ये इलाज होता था अपने उजब का, कि मेरा कमाल नहीं है, हमारे कमाल को दूसरों की तरफ डालना। जी, हमारे कमाल को दूसरों की तरफ डालना, ताकि नुक्ता बयान करने के बाद दिमाग में ख्याल ना आ जाए कि मैंने आज बड़ी अच्छी और उम्दा बात कह दी, इस ख्याल का फौरन इलाज फरमाते। बहरहाल अल्लाह ताला ने शेख को मकाईद नफ्स, नफ्स की मक्कारियों से बचाने का एक जरिया बनाया है, शेख को नफ्स की मक्कारियों से बचने का एक जरिया बनाया है। लिहाजा जब कभी अपना कोई अमल अच्छा मालूम हो, उसको अपनी तरफ मंसूब करने के बजाय अपने शेख की तरफ मंसूब कर दो कि जो कुछ है वो मेरे शेख का फैज है, जो कुछ भी है वो मेरे शेख का फैज है। जी हमारे हजरत वाला ने फरमाया कि एक मरतबा हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह वाज फरमा रहे थे, कि एक मरतबा हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह वाज फरमा रहे थे, वाज के दौरान आपके ऊपर एक हाल तारी हो गया, वाज के दौरान एक हाल तारी हो गया, और जोश में आकर जोर जोर से फरमाने लगे, ये उस हाजी हाजी का फैज है, ये उस हाजी का फैज है, ये उस हाजी का फैज है। बस एक वजद में आ गए, वाज के दौरान एक हाल तारी हो गया, और फिर ये जोर जोर से कहने लगे। लिहाजा खूब समझ लो कि न तो शेख के वास्ते की नाकदरी करो कि शेख तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, और न ये समझो कि जो कुछ करेगा शेख ही करेगा, मुझे कुछ नहीं करना, और हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। ये दोनों इंतहाई गलत है, और हक इन दोनों इंतहाओं के दरमियान है। अमल खुद करो, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करो, अपनी हिम्मत को इस्तेमाल करो, और इस हिम्मत की तकवियत के लिए शेख की बरकत और दुआ को मुईन समझो। सुभान अल्लाह, अजीब तरस है भाई, क्या एक से एक बातें आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बताओ, जिन्होंने अभी तक कोई शेख नहीं बनाया है, तो अब उनके अंदर कितना वो हो जाएगा, नफ्स कितना मक्कार है और कैसा खेल रहा हो, अब भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। जी हजरत हाजी इमदादुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे, हाजी इमदादुल्ला साहब के एक मुरीद थे, वो एक दिन हजरत हाजी साहब के पास आए और अपने अच्छे हालात बयान किए, और कहा कि हजरत ये सब आपका फैज है। हजरत हाजी साहब ने फरमाया कि तुम्हें ऐसा ही समझना चाहिए, अलबत्ता मैं इसकी हकीकत बताता हूं, हकीकत यह है कि सब अच्छाई तुम्हारे अंदर मौजूद थी। देखो मुरीद को तो क्या बताया, तुम्हें ऐसा ही समझना चाहिए, लेकिन हकीकत क्या है वो बताता हूं, तो यानी उन्होंने अपनी भी नफी कर दी। सुभान अल्लाह, वरना शेख के अंदर भी कुछ ऐसा, उन्होंने अपनी कैसी की, फरमाया देखो हकीकत यह है कि सब अच्छाई तुम्हारे अंदर मौजूद थी, ये सब अच्छाई तुम्हारे तुम्हारे अंदर मौजूद थी, मेरी रहनुमाई की वजह से अब वो जाहिर हो गई। मैंने आपको थोड़ी सी एक राय दी तो वो जाहिर हो गई, बाकी तुम्हें यही समझना चाहिए कि ये हाजी साहब का फैज है। देखा, अपनी भी हिफाजत कर ली और उसकी भी हिफाजत हो गई। फिर एक किस्सा सुनाया, वो ये कि एक औरत अपनी पड़ोसन के घर आग लेने गई। पहले जमाने में लकड़ी और कोयला जलाया जाता था, अगर चूल्हा ठंडा है तो उसको गर्म करने में बहुत देर लगती थी। तो ऐसे मौका पर अगर किसी पड़ोसन के चूल्हे में आग होती तो वो औरत उसके चूल्हे से एक अंगारा उठा कर ले आती और उससे चूल्हा सुलगाने में आसानी हो जाती। लिहाजा ये औरत भी अपने पड़ोसन के घर गई और पड़ोसन से कहा, बीवी मेरे घर में आग नहीं है, अगर इजाजत हो तो तुम्हारे चूल्हे से आग ले लूं। पड़ोसन ने कहा कि मेरा चूल्हा तो ठंडा है, इसमें तो आग है ही नहीं। उस औरत ने कहा कि बहन, अगर इजाजत हो तो चूल्हे को कुरेद कर देख लूं, हो सकता है कोई चिंगारी मिल जाए। तो पड़ोसन ने कहा कि कुरेद कर देख लो। चुनाच उस औरत ने उसको कुरेद कर, यानी अंदर को, वो मिट्टी हटाते ना तो शायद कहीं अंदर कोई मक्का और चिंगारी हो, चूल्हे को कुरेदा तो अंदर से एक छोटी सी चिंगारी निकल आई। उस औरत ने कहा, बस मेरा तो काम बन गया, और चिंगारी लेकर चली गई। एक किस्सा सुनाने के बाद हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये चिंगारी उसके चूल्हे में मौजूद थी। देखो, अगर चिंगारी न होती तो औरत हजार मरतबा भी अपना 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 हाथ वहां चलाती तब भी ये चिंगारी न निकलती। लिहाजा चिंगारी तो पहले ही मौजूद थी, लेकिन वो चिंगारी उसके कुड़छा चलाने से निकली। कुड़छा यानी वो हाथ में कुछ लेकर उसको निकलते चलाते, चलाने से निकली। अगर ये कुड़छा न चलाती, यानी वो लोहे से उस मिट्टी को न हटाती, तो चिंगारी भी आहिस्ता आहिस्ता बुझकर खत्म हो जाती। तो क्या हुआ कि चिंगारी मौजूद थी, लेकिन उसको हिलाया तो उसमें से निकली। तो फरमाया, ये मिसाल से समझा रहे थे उस मुरीद को, फरमाया इसी तरह शेख दर हकीकत चूल्हे में कड़छा चलाने वाला है, शेख ढूंढने वाला है। वो कोई चीज से उसको थोड़ा सा मिट्टी को हटाते हैं ना, अब समझ गए कड़छा चलाना, यानी वो लकड़ी या लोहे की चीज से उस रेत को जो चूल्हे में होती है उसको हटाने का। तो फरमाया शेख हकीकत में ये होता है, वो चिंगारी तो खुद मुरीद के अंदर मौजूद होती है। चिंगारी अच्छाई मुरीद के अंदर मौजूद होती है, शेख तो इस तरीके से उसको हटाकर उसको निकालता है। लेकिन अगर शेख इसके अंदर कड़छा न चलाता, उसको न हटाता राख, तो वो चिंगारी वहीं पड़ी पड़ी खत्म हो जाती, इससे कोई फायदा न उठाया जाता। लेकिन शेख ने मिट्टी को हटाकर चलाकर उसको फायदामंद और नाफे बना देता है उस चिंगारी को। लिहाजा शेख बेकार भी नहीं, इसलिए कि अगर शेख अगर उसमें से ढूंढ कर उसकी वो चिंगारी न निकालता, अगर वो कड़छा न चलाता, तो चिंगारी कैसे निकलती। और शेख फाइले हकीकी भी नहीं है कि हकीकत में यही करने वाला, नहीं, क्योंकि चिंगारी तो पहले से मौजूद थी। तो हकीकत में करने वाला तो अल्लाह है, जो अल्लाह ने पहले से रखी है, शेख ने तो उसको चमकाया है। देखो, यहां पर भी निस्बत अल्लाह की तरफ गई, अपनी तरफ नहीं हुई। जी, डायमंड की सफाई करके, बिल्कुल सही है, क्योंकि पत्थर के अंदर डायमंड तो मौजूद है, लेकिन निकाल कर देता है उसका माहिर का, हाँ ये होता है। तो शेख ऐसा ही होता है। तो हर एक के अंदर नेकी की मौजूद है, डायमंड मौजूद है। तो फरमाया चिंगारी तो पहले से मौजूद थी, बस शेख ने उसको निकाल कर उससे काम लिया। हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी खूबसूरत मिसाल से इस बात को समझा दिया, समझो। शेख को नेमत उजमा समझे, शेख जो है उसको बहुत बड़ी नेमत समझे, नेमत उजमा समझे। मैंने अपने वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह से बारहा सुना कि हजरत मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा और आपके आशिक थे, एक दिन हजरत मुफ्ती साहब हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाने लगे कि मुफ्ती शफी साहब हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह से, नहीं मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब फरमा हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाने लगे कि हजरत यूं ख्याल होता है कि अगर सारी उम्र अल्लाह जल्ल शानू के हुजूर सजदे में पड़ा रहूं, इस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए किस खानकाह से हमारा ताल्लुक हो गया तो भी हक के शुक्र अदा नहीं हो सकता। किस खानकाह से हमारा ताल्लुक हो गया तो भी फरमाया उस शुक्र का हक अदा नहीं हो सकता। कब? कि फरमाया पूरी जिंदगी, सारी जिंदगी अगर हुजूर के सजदे में, अल्लाह जल्ल शानू के हुजूर सजदे में पड़ा रहूं, इस नेमत का शुक्र अदा करता रहूं, तो भी इस खानकाह से जो हमारा ताल्लुक जुड़ा है इसका हक अदा नहीं कर सकता। तो देखो इतनी बड़ी नेमत है शेख का ताल्लुक, तो जिनका जुड़ चुका है वो इस नेमत को समझे, बहुत बड़ी नेमत है। हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने सुना तो कोई तरद्दुद नहीं फरमाया और फरमाया कि हाँ भाई आपको ऐसा ही समझना चाहिए, क्योंकि तालिब का फायदा उसी में है। और आज भी बहुत सारे कहते हैं जो हम तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमारे बड़े थे, लेकिन उनको हमारे जैसे गुनहगार से भी उनको फायदा हो रहा है और इतनी दुआएं देते हैं कि भाई कोई हद नहीं कि हमें बहुत फायदा हुआ, हमें आज समझ में आया। कोई तो कहता है हम बहुत लेट हो गए, अरे पहले से ही हम आपसे जुड़ जाते। तो ये कैसा, जब हम तो गुनहगार है तो इन हजरत की बातों में क्या असर होगा। तो फरमाया आपको ऐसा ही समझना चाहिए, क्योंकि तालिब का फायदा उसी में है कि वो अपने आप को शेख का ताबे और ममनू एहसान समझे और ये समझे कि शेख मेरे लिए नेमते उज्मा है। बहरहाल उसी का नाम है एतदाल, कि आदमी न इस तरफ झुके न उस तरफ झुके, और उसी का नाम सुन्नत और शरीयत और तरीकत का इम्तिजाज है। इसके अंदर हर चीज उसकी हद पर हो, इस हद से आगे न बढ़े, यही सारी तरीकत है। देखो एक होती है सुन्नत, एक होती है शरीयत, एक होती है हकी तरीकत, फिर एक होती है हकीकत। हकीकत में असल में तो तीन ही दर्जे, शरीयत तरीकत और हकीकत। शरीयत आमाले जाहिरा का नाम, तरीकत आमाले बातिना का नाम, और हकीकत अल्लाह से ताल्लुक मिल जाने का। क्योंकि आमाले बातिन के जरिए से अल्लाह से मिलना है तो उसको हकीकत मिल गई, फिर नमाज की हकीकत मिलेगी, फिर दुआ की हकीकत मिलेगी, रोजे की, फिर जो आमाल में हम दुआ में मांगते हैं अल्लाह हमें हकीकत अता फरमा, ये हकीकत बाद में मिलती है। पहले शरीयत को जिंदा करना है, फिर तरीकत में जाना है, फिर हकीकत में जाना है। अब शरीयत को जिंदा कैसे करेंगे? सुन्नत के तरीके से, अल्लाह के अहकाम को नबवी तरीके पर करना। सुन्नत और शरीयत ये मिली हुई है, ये अलग हो ही नहीं सकती। जैसे कलमा मिला हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, तो अल्लाह के अहकाम को नबवी तरीके पर पूरा करने का नाम शरीयत है, और नबी का जो तरीका आएगा उसी का नाम सुन्नत हो गई। तो खैर, तो अब ये सारा मिला जुला जो होगा, फरमाए यही तरीकत है, इससे आगे नहीं बढ़ सकते, सब में सब जरूरी है। तो याद रखिए, शरीयत सुन्नत और तरीकत। हमारे हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ी अच्छी बात फरमाया करते, जो याद रखने की है वो ये कि देखो शरीयत नाम है हुकूक का, बहुत अच्छी बात है, सुनो बल्कि लिख लेना पॉइंट, शरीयत नाम है हुकूक का। किसके हुकूक का? अल्लाह के हुकूक का और बंदों के हुकूक का, और सारी शरीयत उन्हीं दो चीजों के दरमियान में घूम रही है। सारी शरीयत में या तो बंदों के हुकूक होंगे या अल्लाह के हुकूक होंगे, क्योंकि शरीयत नाम है हुकूक का, और हुकूक किसका? अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक। सुन्नत नाम है हुदूद का, सुन्नत नाम है हुदूद का, यानी इन हुकूक को किस तरह अदा किया जाए। जी, इन सुन्नत नाम यानी उन हुकूक को, अब हुकूक मालूम हो गए लेकिन कैसे अदा करना वो हद सुन्नत बताएगी। हुकूक को किस तरह अदा किया जाए और किन हुदूद में रहकर अदा किया जाए, ये चीज सुन्नत से मालूम होती। हुदूद बताएगी किस तरह और किन हुदूद तक। हुकूक और इबाद, हुकूकुल इबाद जी, हुकूक का नाम फरमाया, शरीयत हुकूक का नाम है और सुन्नत हुदूद का नाम है। यानी उन हुकूक को, अब हुकूक चाहे अल्लाह के हो चाहे बंदों के हो, किसी के भी हुक, तो सुन्नत क्या करती है, उन हक को कैसे अदा करना, किन हद तक अदा करना, हुदूद बताएगी। तो फरमाया इस हुदूद के अंदर, तो ये सुन्नत से मालूम होगी। और तरीकत नाम है, तरीकत क्या है, हिफ्ज़े हुदूद का, हुदूद की हिफाजत, यानी हुकूक की जो हुदूद है उनकी कैसी हिफाजत की जाए कि आदमी का एक कदम भी न आगे बढ़े न एक कदम पीछे हो, बस हद पर जाकर आदमी रुक जाए। ये हिफ्ज़े हुदूद तरीकत के जरिए अंजाम पाती है। सुभान अल्लाह, क्या बात बताए। शरीयत नाम है हुकूक का, सुन्नत नाम है हुदूद का, और तरीकत नाम है हिफ्ज़े हुदूद का। क्योंकि हुदूद तो मालूम हो गई, लेकिन अब हुदूद की हिफाजत भी तो जरूरी है, वरना इंसान क्या होगा, आगे भी निकल सकता है पीछे भी रह सकता है। तो जब आगे निकल जाएगा, हुदूद से आगे निकल जाएगा तो बिदत हो जाएगी। तो उसके हिफ्ज़े हुदूद जो है वो बताएगा तरीकत। यानी शेख के पास जाकर आदमी का मिजाज इस तरह बन जाता है, तो शेख क्या करता है, क्योंकि वो तरीकत का होता है, तो वो इसलिए फरमाया पहले तो शेख जो बिल्कुल जो इंसान दीन से दूर है उसको तो पहले दीन पर लाते हैं, भाई नमाजी बने, रोजादार बने, उसकी पहले इस्लाह नहीं होती है, क्योंकि शरीयत पर तो लाना जरूरी है, शरीयत के बगैर इस्लाह कैसे होगी। इसलिए उनको जिक्र और अस्कार कम बताए जाते हैं, नमाज की पाबंदी करोगे नमाज नहीं पढ़ रहा है, और उसकी कारगुजारी दो काम, मैंने 4 वक्त की नमाज शुरू कर दी, मैंने 5 वक्त की शुरू कर दी, फिर बताएंगे अब इसको तजवीद सीखो, फिर बताएंगे उसके मसाइल सीखो, उसके लिए यही जिक्र अस्कार है जो बिल्कुल शरीयत से दूर है। ये इस्लाह तो उसके लिए है जो शरीयत पर आ गया है और शरीयत पर अमल शुरू कर दिया रहा, अपने अंदर अब चाह रहा है कि मैं आगे बढ़ूं, तो अब आगे मत बढ़ो, अब तरीकत के रास्ते से जाओ। यानी शेख के पास जाकर आदमी का मिजाज इस तरह बन जाता है कि इन हुदूद की हिफाजत करना उसको आ जाता है। कि अब देखो गुस्सा है, अब गुस्से के हुदूद भी है, अब हुदूद से आगे निकल जाना ये भी बेकार, और हद से नीचे उतर जाना वो भी बेकार, जैसे कल के सबक में गया, अब हद पर रहना, तो ये कहां से सीखने को मिलेगा, ये शेख के पास जो जाएंगे इस्लाह होगी, वही इस्लाह, उसी का नाम है तरीकत। कि वहां पर जाकर आपको हुदूद की हिफाजत मालूम होगी कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना, अपने दिल और दिमाग को कैसे कंट्रोल करना, वरना दिमाग और दिल से हसद शुरू हो जाएगा, अब हसद को कंट्रोल कर रहा है, उसका इलाज कर रहा है, तो ये हुदूद की हिफाजत हो रही है। और देखो जो अपनी इस्लाह नहीं करा रहे, देखना उनको, वो अपनी जिंदगी में कभी हद से आगे जा रहे या तो कभी बिल्कुल छूट रहे, और उसी के अंदर फिर वसाविस में मुब्तला है, हम काम कर रहे हैं हमें क्यों आगे फायदा नहीं हो रहा। तो फरमाया शेख के पास जाकर आदमी का मिजाज इस तरह बन जाता है कि इन हुदूद की हिफाजत करना उसको आ जाता है। बहरहाल वो 3 जुमले फरमाया करते थे, क्या 3 जुमले थी, एक शरीयत, सुन्नत और तरीकत। शरीयत क्या है, नाम है हुकूक का, सुन्नत क्या है, नाम है हुदूद का, और तरीकत नाम है हिफ्ज़े हुदूद का। अब बताओ तीनों चीजें सीखना जरूरी है, अब इसमें से कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं ये एक जरूरी है दूसरी नहीं, तीनों अपनी जगह पर जरूरी है। जब जाके दीन होगा, इसमें से एक चीज दीन नहीं है, तीनों मिलकर दीन बनेगा, तीनों मिलकर दीन बनेगा। इसलिए बहुत सारे तो क्या है, जिक्र अस्कार खूब करते हैं लेकिन नमाजें नहीं पढ़ते, तो आप कहां से इस्लाह होगी। इसलिए पहले फराइज को तो जिंदा करना है, लिहाजा पीरी मुरीदी का जो सारा सिलसिला है कि शेख के पास जाना और अपनी इस्लाह कराना, इन सब का मकसद हिफ्ज़े हुदूद है। और हिफ्ज़े हुदूद समझ गए, जैसे कल मिसालें गई थी कि भाई जितनी बीमारियां है, जितने बुरे सिफात है, सिफाते रजीला जो है वो उसका इजाला नहीं होता है, इमाला होता है। ये इमाला जो है ना, वही हिफ्ज़े हुदूद है कि ये सिफात अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन उनको सही इस्तेमाल करने का तरीका सीख लो। क्योंकि जैसे गुस्सा है, गुस्सा न हो तो इंसान बेकार है, मर जाएगा, और गुस्सा आगे बढ़ जाए तो भी नुकसान है, बल्कि गुस्से के हुदूद होते हैं, ऐसे हसद के और ऐसे दूसरे बीमारी के, सब चीज के, इस तरीके से। तो वो तरीकत से सीखना पड़ेगा, वो किसी रूहानी डॉक्टर से सीखना पड़ेगा। बार बार बता रहा, अल्लाह करे कि हमारी समझ में बात आ जाए। जी, तो फरमाया हिफ्ज़े हुदूद यानी कितना काम करूं, हिफ्ज़े हुदूद यानी कितना काम करूं और कहां जाकर रुक जाऊं, ये हिफ्ज़े हुदूद होते हैं। वही हुआ कि गुस्सा, गुस्सा निकालना तो है लेकिन कितना निकालू, उसके हुदूद है ना। उसको डांटना तो है, कितना डांटू, दो बातों से काफी है, दो की जगह चार मत करो, तो ये हुदूद की जो हिफाजत है ना। हम डांटने बैठे तो गुस्सा आया तो बहुत सारा डांट दिया, नहीं, ये हिफ्ज़े हुदूद और खामोश रहना, तो ये सारी चीजें। तो फरमा ये बताएगा हुदूद यानी कहां जाकर रुक जाओ, इससे आगे न बढ़ू, और ये ऐसी चीजें जिसको दो और दो चार करके दो टोक तरीके से बताना मुश्किल है, जब तक उसका तजर्बा न कराया जाए और उसकी मश्क न कराई जाए, उसकी आदत न डलवाई जाए। शेख को उसके मकाम पर रखो। ओहो, चलो बात पूरी हो रही है। तो शेख का मकाम भी यही है कि अगर शेख की नाकदरी हो जाए, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, बड़े वबाल की बात है। वाकईतन इंसान फिर बहुत खतरनाक गिरता है। शेख बनाने के बाद, इसलाह कराने के बाद जो शेख की नाकदरी हो जाए, तो फरमाते हैं इससे बड़े वबाल की बात है। और अगर शेख को उसके मर्तबे से आगे बढ़ा दिया जाए और उसको खुदा बना दिया जाए, इससे भी अल्लाह बचाए। बाजों ने उसको खुदा बना दिया तो वो बिदात में मुबतला हो, उनके नजदीक शेख ही सब कुछ होता है। और बाजों ने ऐसा गिराया, बोले नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है, ठीक है पूछ लिया, तो इन्होंने हद से गिरा दिया, उन्होंने हद से बढ़ा दिया। फरमाया देख, शेख का काम इतना है, इससे ज्यादा नहीं। अल्लाह बचाए, ये शिर्क का मकाम है, अगर हद से ज्यादा बढ़ा दिया तो ये शिर्क का मकाम है। इन दोनों हुदूद के दरमियान में रहकर किस तरह चले, ये भी शेख ही बताता है, जिस तरह हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बताई। अल्लाह ताला हम सबको उसकी फहम अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए, और हमें हुदूद के अंदर रहने की तौफीक अता फरमाए, और हिफ्ज़े हुदूद भी अल्लाह हमें सिखा दे। ترجمة نانسي قنقر